मैं सुधीर कुमार शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, मुगल काल। आज अकबर महान 1556 से 1605 ईस्वी के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। अकबर महान 1556 से 1605 ईस्वी केवल मुगल शासकों में ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य युग के भारतीय शासकों में अकबर को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। मुगल साम्राज्य को वास्तव में अकबर में स्थापित करने, उसका विस्तार करने, उसे स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय अकबर को है। इसके अतिरिक्त राजस्व और शासन के जिन नवीन और उदार सिद्धांतों को उसने प्रतिपादित किया, वह उसे भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के महान शासकों में स्थान प्रदान कराता है। प्रायः 350 वर्ष का मुसलमानी शासन उस समय तक भारत में अस्थिर था और एक भी मुसलमान शासक न तो अपने राजवंश को स्थिरता प्रदान कर सका था और न ही शासन के उन सिद्धांतों को व्यवहार में ला सका था जिनके आधार पर एक विदेशी सत्ता और भिन्न धर्म के मतावलंबी एक अन्य देश में अस्थायी रूप से निवास करने का या शासन करने का अधिकार प्राप्त कर पाते। अकबर से केवल शेरशाह ने निसंदेह प्रजा की भलाई के आधार पर शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया था, परंतु शेरशाह को बहुत थोड़ा समय मिल सका था। उसकी नीति अभी अस्पष्ट ही थी और उसके प्रभाव के परिणामों को समझने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था कि उसकी मृत्यु हो गई। अकबर को अपनी नीतियों एवं उनके प्रभाव को देखने के लिए एक लंबा समय प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वह निश्चय ही शेरशाह की तुलना में अधिक उदार, अधिक दृढ़, अधिक नीतिज्ञ और अधिक विशाल दृष्टिकोण वाला सिद्ध हुआ। निसंदेह अकबर ने अपने राजवंश को अस्थायित्व प्रदान किया और शासन के उन सिद्धांतों का व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोग किया जिनके आधार पर मुगल वंश और इस्लाम के समर्थक शासकों को एक विदेशी देश अथवा अपने से पृथक धर्म के मतावलंबियों पर शासन करने का नैतिक अधिकार प्राप्त हो सका। इसी में अकबर की महानता थी। लेनपुल ने लिखा है, वह भारतीय बादशाहों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, अकबर भारतीय इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का महत्वपूर्ण शासक था। अकबर की मौलिक योग्यताओं और सफलताओं की तुलना तत्कालीन यूरोपीय शासकों से करने में उसकी श्रेष्ठता सरलता से स्थापित हो सकती है। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। पहला, राज्याभिषेक और प्रारंभिक कठिनाइयां। अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानु बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर सिंध में इधर उधर भटक रहा था। जिस समय हुमायूं भारत से भागकर पर्शिया के शाह के यहाँ शरण के लिए गया, उस समय वह अपने बेटे अकबर को कंधार के निकट छोड़कर भागा। अस्करी ने अकबर को अपने संरक्षण में ले लिया। 3 वर्ष की आयु में अकबर की भेंट अपने पिता से पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने कंधार और काबुल पर अधिकार किया। यहीं उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया, परंतु एक बार पुनः अकबर को अपने पिता से बिछड़ना पड़ा। एक युद्ध में कामरान ने बालक अकबर को कंधार के किले की दीवार पर लटका दिया, जबकि हुमायूं की तोपें किले पर आग बरसा रही थी। भाग्य से ही अकबर बच गया, 5 वर्ष की आयु में अकबर पिता के साथ ही रहा और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। अकबर ने साहित्यिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई, यद्यपि घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण हो गया। उसने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया और हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने के प्रयत्न में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल वासा घोषित किया गया। उसका राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। उस समय अकबर 14 वर्ष की आयु को भी पूरा नहीं कर पाया था। अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ था। भारत से बाहर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत काबुल, बख्तखा और कंधार थे। काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम मुनीम खां के संरक्षण में शासन कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना पाते ही बख्तखा खां के सूबेदार मिर्जा सुलेमान ने अपने को केवल स्वतंत्र ही घोषित नहीं किया, अपितु वह मिर्जा हकीम और अकबर को अपने आधिपत्य में करने के लिए उत्सुक हो गया। उसने इस आशय से काबुल पर आक्रमण किया। कंधार पर जो बैरम खां की जागीर में था, पर्सिया के आक्रमण का निरंतर खतरा रहता था। ऐसी स्थिति में अकबर को अफगानिस्तान से कोई सहायता मिलने की आशा न थी, बल्कि कभी भी सहायता की आवश्यकता हो सकती थी। भारत में दिल्ली, आगरा और इनके निकट के भाग के अतिरिक्त मुगलों के हाथ में कुछ न था। पंजाब मुगलों के अधिकार में होते हुए भी सिकंदर सूर की उपस्थिति के कारण असुरक्षित था। इस मुगल भूप्रदेश में अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए मुगल सरदार और सेना विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई थी। ग्वालियर, मालवा, बिहार, बंगाल, गुजरात आदि विभिन्न प्रदेशों में अफगान स्वतंत्र हो गए थे और उत्तर भारत का अधिकांश भाग विद्रोही अफगान सरदारों के अधिकार में था। सूर वंश के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूर, इब्राहिम सूर और मुहम्मद आदिल सूर अभी तक जीवित थे, विभिन्न प्रदेशों पर अधिकार किए हुए थे और दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए ललायत थे। राजस्थान में जोधपुर मारवाड़ का शासक मालदेव अभी जीवित था और उसके अतिरिक्त मेवाड़, अंबर, जैसलमेर आदि के शासकों ने अपनी शक्ति को पुनः एकत्रित कर लिया था। मुगल सरदारों की आपस की एकता और स्वामी भक्ति पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था। शाह अब्दुल माली ने, जिसे हुमायूं फजंद पुत्र कोष्टक में पुत्र पुकारता था, अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। आर्थिक दृष्टि से अकबर की स्थिति बहुत दुर्बल थी। हुमायूं ने खजाने में धन नहीं छोड़ा था। अधीनस्थ प्रदेशों से तलवार के बूते पर ही लगान या अन्य असूल किए जा सकते थे और दिल्ली एवं आगरा के निकट क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ रहा था। इस प्रकार 13 वर्षीय अकबर के लिए ये सभी परिस्थितियाँ कठिन थीं। अकबर के लिए प्रथम संकट मुहम्मद आतिल शाह सूर ने खड़ा किया, जिसके अधिकार में संभल से बिहार तक का क्षेत्र था। स्वयं आदिल शाह तो योग्य न था, परंतु उसका वजीर एवं सेनापति हेमू निसंदेह योग्य था और आदिल शाह के आदेश से उसने आगरा और दिल्ली के अधिकार करने हेतु आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। 2. बैरम खां की संरचना का समय 1556 से 1560 ईस्वी। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां, जो कराकुइल तुर्क था, को अपना वकील कोष्टक में वजीर नियुक्त किया और उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। अगले 4 वर्ष तक एक प्रकार से अकबर की नहीं बल्कि बैरम खां की सत्ता थे। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों को हल निकालने और भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय बैरम खां को था। बैरम खां का वंश पर्सिया का रहने वाला था। उसका पिता सैफ अली बेग ने बाबर के यहाँ नौकरी की थी और स्वयं बैरम खां 16 वर्ष की आयु से हुमायूं की सेवा में आ गया था। वह अत्यंत सुसंस्कृत, शिक्षित, वफादार, साहसी व बहादुर सैनिक और सेनापति था। उसने हुमायूं की तरफ से कन्नौज के युद्ध में भाग लिया था और उस समय जबकि हुमायूं कंधार भागने की तैयारी कर रहा था, वह उससे जाकर मिल गया था। उसके पश्चात वह निरंतर हुमायूं के साथ रहा और पर्सिया, कंधार, काबुल तथा हुमायूं की भारत की पुनर्विजय के पर उसने हुमायूं के प्रत्येक प्रकार की सेवा की थी। हुमायूं ने उसके इन्हीं गुणों से खुश होकर अमीर का पद प्रदान किया था। उसने हुमायूं की भारत की पुनर्विजय में ही नहीं बल्कि अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों को समाप्त करने में पूर्ण सहयोग दिया। कालांतर में बैरम खां की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ ही उसको संरक्षक, खान खाना, याकफादार आदि की उपाधि मिली। वास्तव में अकबर की स्थिति को दृढ़ करने में सबसे बड़ा भाग उसी का था। वह फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। पहला, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी। जबकि अकबर पंजाब में ही था, हेमू ने ग्वालियर से आगरा की ओर बढ़ना आरंभ किया। आगरा के सूबेदार इस्कंदर खां उज्बेग ने हेमू की शक्तिशाली सेना से युद्ध करना बेकार समझा और वह दिल्ली भागकर चला गया। आगरा पर अधिकार करने के पश्चात हेमू दिल्ली की ओर बढ़ा। वहां के सूबेदार तारदी बेग ने किले से निकलकर उसका मुकाबला किया, परंतु उनकी पराजय हुई। तारदी बेग किले को छोड़कर पंजाब की ओर भाग गया। इस प्रकार दिल्ली, आगरा और संभल का संपूर्ण क्षेत्र हेमू के अधिकार में चला गया। दिल्ली में हेमू ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाला भारत का 14वां शासक था। उस समय मुगलों की स्थिति बहुत दुर्बल थी और अनेक सरदारों ने अकबर को काबुल चले जाने का परामर्श दिया, परंतु अकबर और बैरम खां ने इसे स्वीकार नहीं किया और पंजाब की सुरक्षा का प्रबंध करके मुगल सेना ने दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। सरहिंद के निकट तारदी बेग, इस्कंदर खां, उजबेग और अली कुली खां अकबर खां से मिले। इस अवसर पर बैरम खां ने चुपके से तारदी बेग को मरवा दिया और बाद में अकबर को इसकी सूचना दी। तत्कालीन इतिहासकारों ने बैरम खां के इस कार्य को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का कारण बताया। आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि वैसे इस अवसर पर हत्या किया जाना भगौड़ों को सबक देने, मुगल सेना के आत्मबल को बढ़ाने और उन सलाहकारों की आवाज़ को समाप्त करने के लिए आवश्यक था जो अकबर को काबुल जाने की सलाह दे रहे थे। इस कारण वह कार्य एक हत्या हुए होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से उचित था। हेमू ने अपने तोपखाने को फधारण संरक्षण के आगे भेज दिया था, जिस पर अली कुली खां के नेतृत्व में मुगलों के अग्रगामी दल ने अधिकार कर लिया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। तोपखाना न होते हुए भी हेमू के आक्रमण से मुगल सेना में खलबली मच गई, परंतु उसी अवसर पर हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह मूर्छित होकर अपने हाथी के हौदे में गिर गया। उसके महावत ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयत्न किया, परंतु वह असफल हुआ और हेमू पकड़ा गया। हेमू की सेना इधर उधर भाग गई अथवा मारी गई। हेमू को अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने संभवतः अपनी तलवार उसकी गर्दन से छुआई और बैरम खां ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार हेमू की पराजय और मृत्यु हुई। हेमू की पराजय के मुख्य कारण उसके तोपखाने का पहले ही मुगलों के हाथ में चला जाना और युद्ध के दौरान उसकी आंख में तीर लग जाना था। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने लिखा है, उसकी पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर को विजय दैवी संयोग से मिली थी। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था। यद्यपि डॉक्टर एएल श्रीवास्तव ने उसे ब्राह्मणों की भार्गव जात उपजाति का बताया है। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान बढ़ा और पदोन्नति हुई। धीरे धीरे उसने अपनी योग्यता से राजकीय सम्मान प्राप्त किया और आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिनमें से उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। उसकी सेना में हिंदू ही नहीं बल्कि अफगान भी थे और वे सभी उसमें विश्वास करते थे। दिल्ली का अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। हेमू पर अपने मालिक आदिल शाह से गद्दारी का करने का आरोप लगाना गलत होगा। मध्ययुग में तलवार के आधार पर राज्य शक्ति प्राप्त करना साधारण परंपरा थी। मोहम्मद आदिल शाह ने न केवल अपने भांजे को मारकर गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया था बल्कि उस समय दिल्ली भी उसके अधिकार में न थी। इसके अतिरिक्त आदिल शाह विलासी और अयोग्य था। स्वयं उसके संबंधियों ने उसे साफन फत्ता छीनने का प्रयत्न किया था। ऐसी स्थिति में हेमू द्वारा अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करना गलत नहीं माना जा सकता। हेमू ने साधारण स्थिति से उठकर अपने को सम्राट बनाया था, इससे उसकी योग्यता स्पष्ट होती है। यह बात और है कि उसकी सफलता अल्पकालीन थी। दूसरा, सूरवंश के दावेदारों की समाप्ति। अप्रैल 1559 ईस्वी में बंगाल के खिजर खां ने आदिल शाह सूर को एक युद्ध में मार दिया। इसके बाद मुगलों को बंगाल और बिहार की ओर बढ़ने का अवसर मिला। पंजाब में सिकंदर शाह सूर ने कुछ माह के पश्चात आत्मसमर्पण किया। उसे बिहार में एक साधारण जागीर दी गई, परंतु बाद में वह बंगाल की तरफ भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई। इब्राहिम शाह सूर को खाने जमान ने जौनपुर से निकाल बाहर किया और वह उड़ीसा की ओर भाग गया, वहीं उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार 1559 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर दावा करने वाला सूरवंश के सभी उत्तराधिकारी समाप्त कर दिए गए और मुगलों को उनकी ओर से कोई भय न रहा। तीसरा, खोए हुए भूक्षेत्रों की प्राप्ति और सुरक्षा। पानीपत के युद्ध की जीतने के पश्चात मुगलों ने सरलता से दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात मेवात पर अधिकार किया गया और हेमू के पिता को मृत्युदंड दिया गया। तत्पश्चात अजमेर, संभल, लखनऊ, ग्वालियर और जौनपुर पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। चुनार, रणथंभौर और मालवा को भी जीतने के प्रयत्न किए गए, परंतु चुनार और रणथंभौर पर अधिकार न हो सका तथा मालवा को जीतने के लिए भेजी गई सेना को अकबर और बैरम खां के संबंध खराब हो जाने का कारण वापस बुलाना पड़ा। सुलेमान मिर्जा कई माह तक काबुल के को घेरे रहा, परंतु जब उसे जीतने की आशा न दिखाई न दी तो वह उज्बेगों के भय तथा आने वाले जाड़े और बर्फ की संभावना को देखकर केवल इस शर्त पर चला गया कि उसका नाम केवल एक दिन के लिए खुतबा में पढ़ दिया जाए। इस प्रकार मुगलों की उत्तर पश्चिम की सीमाएं सुरक्षित हो गई, परंतु इस समय कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, जिसे वहां के सूबेदार शाह मोहम्मद को बाध्य होकर पर्सिया को सौंपना पड़ा। इस प्रकार बैरम खां के संरक्षण का 4 वर्ष का समय कंधार की हानि के अतिरिक्त सफलता, सुरक्षा और संगठन का था। काबुल से लेकर जौनपुर तक, पंजाब की पहाड़ियों से लेकर अजमेर तक अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। गखरों को भी मुगल अधिपत्य स्वीकार करने के लिए मना लिया गया। चौथा, बैरम खां का पतन। यद्यपि बैरम खां ने मुगल वंश की काफ़ी सेवा की थी और राज्य में उसका बहुत प्रभाव था, परंतु 1560 ईस्वी में उसका पतन हो गया। निजामुद्दीन ने उसके पतन का कारण विभिन्न सरदारों द्वारा अकबर को भड़काना बताया था। अकबरनामा में लिखा है कि उसके पतन का कारण उसका दंभ था। अबुल फजल ने लिखा था, उसका व्यवहार बर्दाश्त से बाहर हो गया था और उसका दिमाग उसके खुशामीदियों ने खराब कर दिया था। फरिश्ता ने लिखा था, बैरम खाए पर कामरान मिर्जा के लड़के अब्दुल कासिम मिर्जा का पक्ष लेने का संदेह किया गया था। इस प्रकार तत्कालीन इतिहासकारों ने बैरम खां के पतन के विभिन्न कारण बताए थे। यद्यपि बैरम खां की वफादारी पर संदेह करना तो अनुचित होगा, परंतु इसमें संदेह नहीं कि बैरम खां का व्यक्तिगत व्यवहार तुर्की सरदारों और मुख्यतः अकबर के निकट के संबंधियों द्वारा अकबर को भड़काना और शासन सत्ता को स्वयं अपने हाथों में ले लेने की अकबर की इच्छा आदि बैरम खां के पतन के कारण बने। अनेक तुर्की सरदार और मुख्यतया अकबर के निकट संबंधी, जिनमें से अकबर की धाय माँ माहम अनगा और उसका पुत्र आधम खां, माहम अनगा की लड़की जीजी अनगा और उसके पति शमसुद्दीन आदि यह अनुभव करते थे कि उन्हें अपेक्षित पद और सम्मान न मिलने के कारण बैरम खां था। पीर मुहम्मद, जिसे बैरम खां ने उसके पद से हटा दिया था, उनके साथ हो गया था और उसे पद से हटाए जाने से अन्य तुर्की सरदार को अपने बारे में शंकाएं हो गई थी। बैरम खां सिया था जबकि अकबर के संबंधी सुन्नी थे। उन्होंने बैरम खां पे दोषारोपण किया कि वह सुन्नी मत के विरुद्ध कार्य कर रहा था। सुन्नियों द्वारा मान्यता प्राप्त शेख मुहम्मद गयास को हटाकर सिया शेख गदाई को सद्र का पद देना भी संदेह और असंतोष का कारण बना। तारदी बेग का कत्ल और अब्दुल माली एवं पीर मुहम्मद को कैद किया जाना भी सुन्नी सरदारों के प्रति शंका का कारण था। इसके अतिरिक्त बैरम खां ने हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान बेगम से विवाह करके राज्य परिवार से संबंध स्थापित कर लिए थे। वह भी सुन्नी सरदारों की ईर्ष्या का कारण बन गया था। बैरम खां का व्यवहार अकबर के प्रति एक अल्पायु बालक जैसा था, जबकि अकबर जवान होता जा रहा था। अकबर और उसके पारिवारिक जनों को व्यक्तिगत व्यय हेतु समुचित धनराशि नहीं मिल रही थी। अकबर के स्वयं के सेवकों और संबंधियों को उचित सम्मान और पद भी प्राप्त नहीं हो रहे थे, जबकि बैरम खां के सेवकों को अच्छे पद दिए जा रहे थे। एक दो घटनाएं ऐसी भी हुईं जिनके कारण अकबर को अनुभव हुआ कि बैरम खां उसका उचित सम्मान नहीं करता। अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ था जबकि बैरम खां ने बिना अकबर की सलाह के महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए थे। यह सभी अकबर को रुचकर नहीं था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अकबर व्यस्क हो गया था और अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं करना चाहता था। बैरम खां अकबर की इस मनस्थिति को समझने में असफल रहा। बैरम खां के विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और वे सभी अकबर के साथ थे। अकबर ने बैरम खां से खुलकर झगड़ा उचित न समझा। एक बार जबकि अकबर आगरा में था, वह शिकार के लिए गया। वहीं उसे समाचार मिला कि उसकी माँ बीमार है। बैरम खां को सूचना भेजकर वह वहीं से दिल्ली पहुँच गया, जहाँ सभी बेगमों और बादशाह के संबंधियों ने बैरम खां को उसके पद से हटाने की मांग की। अंत में अकबर ने बैरम खां को पद से हटाने के आदेश भेज दिए। बैरम खां ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और मक्का जाने को तैयार हो गया। वह धीरे धीरे पंजाब की ओर चल दिया जहाँ से संभवतः उसे अपना खजाना लेना था। बैरम खां के विरोधियों को इससे संतोष नहीं हुआ और अकबर ने बैरम खां के शत्रु मुल्ला पीर मुहम्मद को एक सेना के साथ उसे भारत से शीघ्र निकालने के लिए भेज दिया। बैरम खां ने इसे अपना अपमान समझा और उसने मुगल सेना का विरोध करने का निश्चय किया। तिलवाड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध में बैरम खां की पराजय हुई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने उसका सम्मान सहित स्वागत किया और उसके सम्मुख तीन प्रस्ताव रखे, यथा वह चाहे तो कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाए अथवा बादशाह के व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में दरबार में रहे अथवा मक्का चला जाए। बैरम खान ने, जो किसी भी निम्न स्थिति में कार्य करने को तैयार न था, मक्का जाने का निर्णय किया। परंतु बैरम खान मक्का ना पहुंच सका। गुजरात में पाटन नामक स्थान पर अफगानों के एक दल ने उस पर अचानक आक्रमण किया और मुबारक खान नामक एक व्यक्ति ने, जिसके पिता को बैरम खान ने मछिवारा के युद्ध में कत्ल किया था, उसे मार डाला। पाटन के फकीरों ने बैरम खां के मृत शरीर को अंतिम संस्कार किया। बैरम खां के परिवार को बड़ी कठिनाई से दयनीय स्थिति में अहमदाबाद पहुंचाया जा सका। अकबर ने उसके दरबार में बुला लिया, बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और उसके बच्चे अब्दुल रहीम का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। बाद में यही लड़का अपनी योग्यता के कारण खान खाना के पद तक पहुंचा। स्मिथ ने लिखा है, बैरम खां के पतन और मृत्यु की कहानी एक दुखद प्रभाव छोड़ती है। निसंदेह जिस व्यक्ति ने मुगल वंश की जड़ों को भारत में स्थापित करने में इतना सहयोग दिया हो, उसका ऐसा अंत कि उसकी लाश को फकीरों ने दफनाया, दर्दनाक था। परंतु उसका अधिक द्वेष दोष अकबर पर न था। बैरम खां के शत्रु मुख्यतया हरम के दल और जैसा कि अबुल फजल ने लिखा है, अकबर की धाय माँ माहम अनगा इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी थी। तीसरा, तथा कथित पर्दा शासन 1560 से 1564 ईस्वी। बैरम खां के पतन में अकबर के संबंधियों और हरम की स्त्रियों का बड़ा भाग था। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक अकबर ने अपने संबंधियों को शासन में कुछ हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया। इस कारण कुछ अधिक इतिहासकारों ने उस समय को पर्दा शासन अथवा पेटीकोट सरकार का समय पुकारा है। यह कहना तो भूल होगी, इस समय में अकबर पूर्णतया हरम की स्त्रियों में के प्रभाव में था। यदि ऐसा होता तो अकबर की उदार और साम्राज्यवादी नीति का आरंभ इस समय में नहीं हुआ होता। इसी समय अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा कोष्टक में युद्धबंदियों को दास बनाना को समाप्त किया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर कोष्टक में हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर लिए जाने वाला यात्री कर कोष्टक बंद और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। इन उदार सुधारों का किया जाना हरम की स्त्रियों के प्रभाव के कारण हो, यह सोचना भूल होगी। इसी प्रकार अकबर की विस्तारवादी नीति भी इसी समय में आरंभ हो गई थी। मालवा, चुनार, मेड़ता और गोंडवाना पर आधिपत्य किया और आमेर कोष्टक में जयपुर के राजपूत वंश से विवाह संबंध किए गए। निसंदेह यह विस्तारवादी नीति का श्रेय मुख्यतः अकबर को ही दिया जा सकता है। इस कारण यह कठिन कहना उपयुक्त नहीं होगा कि अकबर चार वर्षों 1560 से 1564 ईस्वी तक हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा। हाँ, यह स्वीकार किया जा सकता है कि इन चार वर्षों में उसकी नीति पर हरम की स्त्रियों और उसके संबंधियों का कुछ प्रभाव अवश्य रहा होगा और अकबर अपने स्वयं के प्रभाव को अवसर के अनुकूल प्रयोग में न ला सका होगा। उसमें भी आरंभ के दो वर्षों को ही सम्मिलित करना अधिक ठीक है। शमसुद्दीन का कत्ल, आदम खां को मृत्युदंड 1562 ईस्वी और माहम अनगा की मृत्यु 1562 ईस्वी के बाद से अकबर ने अपने आप को निकटस्थ संबंधियों के प्रभाव से मुक्त कर लिया। 1564 ईस्वी में ख्वाजा मुअज्जम को दिए गए मृत्युदंड ने इस अध्याय को पूर्णतया समाप्त कर दिया। चौथा, साम्राज्य विस्तार। अकबर को विजय और साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। मुगल शासकों में अकबर प्रथम शासक था जिसने संपूर्ण भारत में मुगल वंश का राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था। वह इसे राज्य की प्रगति और सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता था। उसका विश्वास था कि यदि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध नहीं किया जाएगा तो उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे। इस कारण अकबर जीवन पर्यंत राज्य विस्तार में लगा रहा। उसे इस कार्य के लिए समय भी मिला और सफलता भी। उसने अपने जीवन में काबुल से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। दक्षिण भारत की विजय की ओर भी अकबर ने अपना कदम उठा लिया था और कुछ सफलता भी उसे प्राप्त हुई, किंतु तभी उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अकबर ने भारत के बहुत बड़े भाग में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई। पहला, मालवा। मालवा में बाज बहादुर शासक था। वह संगीत और कला का प्रेमी था। अपनी प्रेयसी और पत्नी रूपवती के साथ वह संगीत और नृत्य में लीन रहता था। शासन का न उसे शौक था और न उस और उसका ध्यान था। 1561 ईस्वी में आधम खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। जब मुगल सेना उसकी राजधानी सारंगपुर से केवल 20 मील दूर रह गई, तब बाज बहादुर उसका मुकाबला करने के लिए निकला। सारंगपुर से कुछ दूर तक युद्ध हुआ और बाज बहादुर परास्त हुआ और भाग गया। इसी प्रकार 29 मार्च 1561 ईस्वी में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगल सेनाओं ने अधिकार कर लिया। आधम खां ने उसकी संपूर्ण संपत्ति और स्त्रियों पर अपना अधिकार कर लिया। रूपवती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की। बाज बहादुर और रूपवती की समाधि उज्जैन में है। आधम खां ने लूटी हुई संपत्ति का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया, जिससे अकबर नाराज हो गया और स्वयं सारंगपुर गया। आधम खां के माफी मांगने पर अकबर ने उसे माफ कर दिया और उसी के सूबेदार बनाकर वह वापस आ गया। 1562 ईस्वी में मालवा का सूबेदार मुल्ला पीर मुहम्मद था। उसने वहाँ की प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे। दक्षिण भारत के शासकों की सहायता लेकर बाज बहादुर ने मालवा पर आक्रमण किया। पीर मुहम्मद उसका मुकाबला करने के लिए गया, परंतु उसे परास्त होकर भागना पड़ा। नर्मदा नदी को पार करते हुए उसका घोड़ा गिर गया और पीर मुहम्मद नदी में डूबकर मर गया। मालवा पर पुनः बाज बहादुर का अधिकार हो गया, परंतु अकबर ने अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में एक मुगल सेना मालवा को जीतने के लिए भेजी, जिसने बाज बहादुर को परास्त करके मालवा को अपने अधिकार कर लिया। बाज बहादुर काफ़ी समय तक इधर उधर भटकता रहा, परंतु अंत में उसने मुगल सेवा स्वीकार कर ली और उसे मुगल मनसबदार बना दिया गया। दूसरा, चुनार। 1561 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां को चुनार का किला जीतने के लिए नियुक्त किया। उसी वर्ष उस पर अधिकार कर लिया गया। तीसरा, गोंडवाना। गोंडवाना हिंदू का राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक फैला हुआ था। वहाँ का शासक पीर नारायण था, लेकिन उसके वयस्क हो जाने के पश्चात भी उसकी माता दुर्गावती उसके संरक्षक के रूप में शासन की देखभाल कर रही थी। मालवा दुर्गावती बहुत ही साहसी, बहादुर और योग्य शासिका थी। अपनी योग्यता के कारण ही वह मालवा और दक्षिण भारत के मुसलमान शासकों के मुकाबले अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने में समर्थ हो सकी थी। अकबर की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत गोंडवाना के स्वतंत्र राज्य की कोई स्थान न था। अकबर ने आसफ खां को गोंडवाना की विजय के लिए नियुक्त किया। चौरागढ़ के निकट रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। वीर नारायण के घायल हो जाने के कारण उसे युद्ध से हटना पड़ा। रानी दुर्गावती भी तीरों से घायल हो गई और उसने वहीं पर अपने छाती में कटार भोंककर आत्महत्या कर ली। आसफ खां ने राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण किया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। वीर नारायण और अनेक राजपूत युद्ध करते हुए मारे गए। 1564 ईस्वी में किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। बहुत सा धन, हाथी और सामान आसफ खां के हाथ लगा। आसफ खां ने बहुत थोड़ा हिस्सा अकबर के पास भेजा और अधिकांश स्वयं अपने पास रख लिया। रानी दुर्गावती के साहस, योग्यता और बहादुरी की सभी तत्कालीन और वर्तमान इतिहासकारों ने प्रशंसा की। महोबा के चंदेल वन से संबंधित इस रानी की प्रजा भी उसके शासन से पूर्ण संतुष्ट थी। अकबर का साम्राज्य विस्तार के अतिरिक्त उसके राज्य पर आक्रमण करने का कोई अन्य कारण न था। चौथा, राजस्थान। राजस्थान को अपनी अधीनता में लाना भी अकबर की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। राजपूत शासक के प्रति अकबर की नीति अन्य शासकों से भिन्न रही। राजस्थान में राज्य विस्तार के संबंध में उसकी नीति को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अ, महत्वपूर्ण दुर्गों पर आधिपत्य। ब, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों की इच्छुक राजपूत राजाओं की अपनी अधीनता में लेना और उनको मुगल सेवा से लेकर उनके राज्य उन्हीं को वापस कर देना। तथा स, विरोधी राजाओं से युद्ध करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न। इस नीति का पालन करते हुए अकबर ने राजस्थान में बहुत सफलता प्राप्त की। राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण किले मुगलों के अधिकार में चले गए और मेवाड़ के अतिरिक्त प्राय सभी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। पहला, आमेर, कोष्टक में जयपुर। आमेर का शासक भारमल, कोष्टक में बिहारी मल, पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर के सिख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर गया तो मार्ग में राजा भारमल ने उससे भेंट की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने की इच्छा प्रकट की। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी राजपूत राजकुमारी से अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह को मुगल सेवा में रख लिया और उन्हें उच्च मनसबदार बनाया। सेकेंड, मेड़ता। मेड़ता मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीन जागीरदार जयमल के अधिकार में था। जब मुगल अधिकारी सरफियुद्दीन ने उस पर आक्रमण किया तो जयमल किले को छोड़कर चला गया। देवदास ने मुगलों का मुकाबला किया परंतु उसे उसके 200 साथियों के साथ समाप्त कर दिया गया और मेड़ता का किला 1562 ईस्वी में मुगलों के हाथ से चला गया। तीसरा, मेवाड़। मेवाड़ के शासकों ने निरंतर मुगल सत्ता का विरोध किया था। राणा संगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के सम्मान में कमी आई थी परंतु धीरे धीरे उसने पुनः अपने शक्ति और सम्मान में वृद्धि कर ली थी। मेवाड़ को सिसोदिया वंश उस समय भी राजस्थान में सम्मानित था। तत्कालीन शासक उदय सिंह ने भी अपनी शक्ति के विकास में सहयोग दिया। उसने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह आमेर के कछवाह राजवंश को हेय दृष्टि से देखता था क्योंकि उस वंश ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राणा ने अकबर के शत्रु बाज बहादुर को शरण दी थी और विद्रोही मिर्जाओं ने भी उसका संरक्षण प्राप्त किया था। मेवाड़ गुजरात और उत्तर भारत के मार्ग पर स्थित था। गुजरात की विजय के लिए उसे जीतना आवश्यक था परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि मेवाड़ की सत्ता और सम्मान को समाप्त किए बिना राजस्थान उत्तर भारत की विजय पूर्ण नहीं हो सकती थी। इस कारण 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों के परामर्श को मानकर राणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले से निकलकर जंगलों में चला गया और जयमल को किले की रक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया। करीब 5 महीने तक किले का घेरा पड़ा रहा परंतु मुगलों को सफलता ना मिली। एक रात जब जयमल किले की टूटी हुई दीवार की मरम्मत करा रहा था तभी अकबर ने अपनी बंदूक से निशाना लगाया जिससे जयमल घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। रात को राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और प्रातःकाल फतह सिंह, कोष्टक में फत्ता, उसकी माँ और पत्नी के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगलों पर आक्रमण किया और अंत तक लड़ते हुए मारे गए। अकबर ने किले में प्रवेश करके एक हत्याकांड का आदेश दिया जिसमें हजारों राजपूत मारे गए। यह उसके नाम का एक बड़ा धब्बा है। यद्यपि बाद में उसने आगरा के किले के द्वार पर जयमल और फतह सिंह की हाथी पर बैठी हुई मूर्ति बनवाई। आसफ खां को किलेदार बनाकर अकबर आगरा वापस चला गया। कर्नल टाड ने लिखा है, उदय सिंह दुर्बल और डरपोक था, परंतु यह विचार गलत है। राणा उदय सिंह न तो दुर्बल था और न ही डरपोक। उसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार न की और मेवाड़ के पतन के पश्चात भी उसने अपने देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। चित्तौड़ के किले को उसने अपने सरदारों की सलाह से छोड़ा था। सभ्यता राजपूत जानते थे कि किला मुगल आक्रमण के सम्मुख टिक न सकेगा। इस कारण अपने राजवंश की सुरक्षा के लिए उन्होंने राणा और उसके परिवार को किला छोड़ने का परामर्श दिया था। इस प्रकार राणा उदय प्रताप पर कायरता का दोष नहीं लगाया जा सकता। यह बात दूसरी है कि उसका लड़का प्रताप सिंह साहस और संघर्ष में उससे अधिक दृढ़ सिद्ध हुआ। 1568 ईस्वी में मुगलों ने मेवाड़ की राजधानी और उसके किले चित्तौड़ पर तो अधिकार कर लिया, परंतु मेवाड़ का अधिकांश भू प्रदेश राणा उदय सिंह के अधिकार में रहा। अकबर चित्तौड़ की विजय की स्मृति स्वरूप वहाँ की महामाता की मंदिर से विशाल झाड़ फानूस आगरा ले आया। इसी विजय के उपलक्ष्य में उसे फतहनामा जारी किया। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा। राणा प्रताप ने गद्दी पर बैठते ही शपथ ली थी कि जब वह अपनी राजधानी को स्वतंत्र नहीं कर लेगा, तब तक न वह थाली में रोटी खाएगा और न ही बिस्तर पर लेटेगा। राणा ने आजीवन इस शपथ का पालन किया। समझौते के सभी प्रयत्न असफल हुए। अकबर ने राजा मान सिंह को भेजकर राणा के मुगल आधिपत्य को मानने के लिए कहा, परंतु राणा ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1576 ईस्वी में मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ के लिए भेजी गई। 18 जून 1576 ईस्वी को राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में उस सेना का मुकाबला किया। थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा ने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी, परंतु जब राणा शत्रुओं से घिर गया, तब सरदार झाला ने राणा का मुकुट उतार कर स्वयं पहन लिया और राणा को भागने में सहायता दी। हल्दी घाटी में राणा की पराजय हुई, परंतु मुगल इतने थक गए थे कि आगे न बढ़ सके। गोकुंडा, जिसे राणा खाली कर गया था, राजा मान सिंह ने अधिकार में चला गया, परंतु उससे आगे उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। अकबर ने मान सिंह को वापस बुला लिया। उसके पश्चात भी अकबर विभिन्न सरदारों को भेजकर मेवाड़ के से युद्ध करता रहा, परंतु राणा प्रताप ने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। राणा भूखा रहा, जंगलों में घूमा और उसके पारिवारिक जनों को विभिन्न स्थानों पर छिप कर रहना पड़ा, परंतु राणा ने संघर्ष जारी रखा। 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हुई और अपनी मृत्यु से पहले उसने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। मेवाड़ और राणा प्रताप का मुगल साम्राज्य से युद्ध राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी एक गौरव गाथा है। चौथा, रणथंभौर। रणथंभौर का किला राजा सूरज नारायण के अधिकार में था, जो मेवाड़ के अधीन था। 1569 ईस्वी में मुगलों ने उस पर आक्रमण किया। डेढ़ महीने के घेरे के पश्चात किला मुगलों को सौंप दिया गया। इस प्रकार 18 मार्च 1569 ईस्वी को दुर्ग को अकबर ने अपने कब्जे में ले लिया। कालिंजर उत्तर प्रदेश की बांदा जिले में स्थित यह किला अभेद माना जाता था। इस पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। 1569 ईस्वी में किलंजर के दृढ़ किले पर अकबर का आधिपत्य हो गया। अकबर ने मजनू खां को किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, परंतु किले के स्वामी राजा रामचंद्र ने चित्तौड़ और रणथंभौर के किले के पतन से सबक लिया था, अतः बिना किसी विरोध के उसने किले को मुगलों को सौंप दिया। छठा, मारवाड़। 1570 ईस्वी में मारवाड़ ने स्वेच्छा से अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अकबर के दृढ़ निश्चय और चित्तौड़ और रणथंभौर के किले ने पतन राजपूत शासकों के विरोध करने की शक्ति क्षीण कर दी थी। इसके अतिरिक्त राजपूत शासकों के प्रति अकबर की उदारकता की नीति भी विभिन्न राजपूत राजाओं के आत्मसमर्पण के लिए उत्तरदायी रहा। जोधपुर के शासक मालदेव की मृत्यु हो चुकी थी। उसके लड़के और तत्कालीन शासक राजा चंद्रसेन कोष्टक में उसके पश्चात उदय सिंह ने अकबर से भेंट की और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर के शासक राय कल्याणमल और जैसलमेर के शासक हर राय ने अकबर से भेंट की और न केवल अकबर की अधीनता ही स्वीकार की बल्कि अकबर से विवाह संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार 1570 ईस्वी में मेवाड़ के अधीन कुछ किलों और अधीन प्रदेशों के अतिरिक्त राजस्थान के सभी शासकों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर पहला मुसलमान शासक था जिसने राजस्थान में इतनी सफलता प्राप्त की। राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को ही स्वीकार नहीं किया था बल्कि वे उसकी सेवा में भी चले गए थे। अकबर ने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण किलों पर ही मुगल आधिपत्य स्थापित किया था, अन्यथा प्राय सभी राजपूत शासकों ने राज्य उनको वापस कर दिए थे। उनकी विदेश नीति अकबर ने अवश्य अपने हाथों में ले ली और उन सभी को या तो उनके संबंधियों को मुगल मनसबदार बना दिया। कर्नल टाड ने लिखा है, वास्तव में मुगल साम्राज्य का संस्थापक अकबर था, वह राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था।